ओम शांति। कल जो बाबा की मुरली चली है अवैध मुरली, उसको अब हिंदी में रिवाइज करेंगे। ऑलरेडी इंग्लिश में हम रिवाइज कर चुके हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स तो सभी को याद आ ही गए होंगे। ये जो मुरली है 2/2/2007 की रिकॉर्डेड मुरली है। परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। तो ये मुरली वैसे काफी बड़ी है, लगभग 7 पेज की मुरली है पूरी, लेकिन जो कल सुनाया गया 2.5 या 3 पेज की ही मुरली सुनाई गई इसमें। तो इसमें उस समय जो राजस्थान की गवर्नर थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो भी बाबा से मिलने के लिए आई थी। तो जब बाबा उनसे मिल रहे थे तो बाबा ने कहा कि तीनों सत्ताएं आई हुई है, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता। तो शायद उसी को देखते हुए बाबा ने मुरली चलाई हुई है। तो पहले बाबा ने जैसे कहा कि होलीएस्ट, जो धर्म सत्ता वाले लोग होते हैं जो दुनिया में जो है, वो अपने आप को सबसे बड़े होली मानते हैं कि हमारे से बड़ा और कोई होली है ही नहीं। उसके बाद जो बाबा ने बताया, सेकंड जो पॉइंट बताया कि हाईएस्ट, तो हाईएस्ट मतलब मेरा ऐसा चिंतन चला कि जो साइंस वाले हैं वो अपने आप को सबसे बड़े मानते हैं, हाईएस्ट मानते हैं, कि वो भगवान को भी नहीं मानते साइंस वाले। वो कहते हैं कि हम जो है वही सब कुछ है। साइंस वाले उसी चीज को मानते हैं जो चीज उन्हें दिखाई देती है, जो चीज दिखाई नहीं देती है उस चीज को वो नहीं मानते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है या जोक्स भी है कि एक बार एक बच्चा मंदिर में पूजा करके आ रहा होता है, तो एक साइंटिस्ट उसे पूछता है कि आप मंदिर से पूजा करके आए हो, आप भगवान को मानते हो? तो कहता है कि हाँ मैं मानता हूं। तो कहा कि भगवान दिखाई देता है? तो नहीं दिखाई देता है, बच्चा कहता है। तो जो साइंटिस्ट है वो कहता है कि साइंस ऐसे कहती है कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो चीज होती ही नहीं है, तो इसलिए भगवान है ही नहीं। तो बच्चा थोड़ा देर सोचने लगता है, फिर कहता है कि आप जो सब इतनी इन्वेंशन करते हो सब कहां से करते हो? तो कहता है कि दिमाग से। तो बोलता है दिमाग माना क्या होता है? तो कहता है दिमाग माना ही है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? तो ब्रेन होता है, जो हमारी बुद्धि चलती है। तो बुद्धि दिखाई देती है? तो कहता है कि बुद्धि दिखाई नहीं देती है। तो दिखाई नहीं देती माना आपके अंदर भी बुद्धि नहीं है, वो कहता है फिर। तो ये बाबा ने जो कहा कि हाईएस्ट, साइंस वाले अपने आप को हाईएस्ट मानते हैं। उसके बाद में जो बाबा ने कहा कि रिचेस्ट, तो रिचेस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो धर्म सत्ता वाले लोग हैं, सॉरी राज्य सत्ता वाले लोग जो है, जो भी पॉलिटिशियंस है, जो भी है, वो भले थोड़े समय के लिए ही है लेकिन राजा है वो। भले 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने समय के लिए भी इलेक्शन होता है, तो 5 साल के लिए वो राजा है। तो राजा क्या होता है? रिचेस्ट होता है। तो बाबा ने ये मुरली चलाई हुई है कल की, हाईएस्ट, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। तो अभी इस मुरली को हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। ऑलरेडी हम सुन चुके हैं इस मुरली को, तो इस मुरली को मैंने थोड़े अलग ढंग से किया है। पहले तीन पॉइंट जो दिए हैं बाबा ने इसमें, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। तो हम जब होलीएस्ट कब होते हैं? परमधाम में सबसे ज्यादा हम होलीएस्ट होते हैं, उसके बाद में सतयुग में होलीएस्ट होते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जो हो परमधाम में भी होलीएस्ट हो सबसे ऊंचे, क्योंकि उस समय होली बाप के साथ रहते हैं। और जो होली जो है, पवित्रता जो है, इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। सबसे पहला जो मेन चीज है, फाउंडेशन जो है, वो है पवित्रता। तो सबसे पहले हम बच्चे जो है होलीएस्ट होते हैं परमधाम में भी बाप के साथ, और जब सतयुग में आते हैं उस समय भी हम होलीएस्ट होते हैं। तो लेकिन उस समय की होलीएस्ट जो पवित्रता की, बाबा ने कहा कि विशेषता क्या है? प्रवृत्ति में रहते हम पवित्र रहते हैं, और दूसरी विशेषता क्या बताई बाबा ने? आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। और इसमें बाबा ने कहा कि स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता जो है हमारे अंदर नहीं होती है। तो वहां पे इसलिए हमें जो देव आत्मा कहते हैं, देव आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी आत्मा और शरीर जो है दोनों पवित्र रहते हैं। जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि दुनिया में भी लोग पवित्र रहते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बाप की श्रीमत पे नहीं पवित्र रहते हैं। तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर पवित्र बनते हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो सतयुग में जो हमारी पवित्रता होती है सबसे श्रेष्ठ होती है और विशेष होती है, क्योंकि वहां पे शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं, और स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता का अंश भी नहीं होता है उसमें। उसके बाद जो बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो है सबसे हाईएस्ट भी हो, तो हाईएस्ट कैसे होते हैं? परमधाम में भी हम ऊंचते ऊंच बाप के साथ रहते हैं तो वहां पर भी हाईएस्ट है, सतयुग में भी हाईएस्ट है। उसके बाद जो हमारे मंदिर भी बनते हैं तो वो भी जो है कितनी बाबा ने कहा विधि पूर्वक पूजा होती है, बाकी किसी की भी इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना कि दुनिया में जो मूर्तियां आदि बनाते हैं महान आत्माओं की बनाते हैं या किसी पॉलिटिशियंस की भी बनाते हैं तो ऊपर छत भी नहीं होता है उसके ऊपर, बाहर खुले में होता है, उसके ऊपर ही कौवा भी बैठेगा, कबूतर भी बैठेगा, सब कचरा भी करेंगे, धूप भी पड़ेगा, बारिश भी पड़ेगी, लेकिन लेकिन आप जो बच्चे हाईएस्ट बनते हो तो आपकी विधि पूर्वक पूजा होती है मंदिरों में, तो आप जो है सबसे हाईएस्ट हो। और उसके बाद बाबा ने कहा रिचेस्ट, तो हम रिचेस्ट कैसे हैं? ज्ञान खजानों से। तो बाबा ने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया कि वो जो खजाने हैं वो जो है एक जन्म का खजाना दूसरे जन्म में नहीं चलता, लेकिन आपके खजाने जो है कई जन्मों तक चलते हैं। ये आगे तो आपके खजाने कैसे हैं? ये एक शब्द बाबा ने यूज किया है। और मुरली में क्या वर्ड यूज किया है बाबा ने? आपके खजाने कैसे हैं? आपके खजाने जो है आध्यात्मिक हैं, दुनिया के खजाने जो है विनाशी है, लेकिन आपके जो खजाने बाबा ने वर्ड यूज किया है आध्यात्मिक खजाने आपके, तो ये आध्यात्मिक खजाने कई जन्मों तक चलते हैं। तो बाबा ने इसमें कई खजानों की बात की, मेनली पांच खजाने बताए हैं, ज्ञान गुण शक्तियां, समय का खजाना श्रेष्ठ, संकल्प का खजाना, तो ये पांच खजानों की बाबा ने बात की है। तो ये हो गए पहले तीन, उसके बाद में है दो। तो उसमें बाबा ने जो कहा है कि ये जो खजाने हैं ये खजाने जमा है, तो खजाने जमा कैसे करते हैं उसकी विधि तो आगे बताई है बाबा ने, लेकिन इन खजानों को जमा करने के लिए क्या बनना पड़ता है? दाता और एकाग्र। मुरली में क्या बताया बाबा ने? बांटने पड़ते और बाप की याद। बाबा ने कहा कि सहज योगी, जितना सहज योगी बनते जाएंगे तो ये खजाने जो है अपने आप आपके पास आते जाएंगे। इसकी विधि तो बाबा ने आगे बताई है, तीन जो बताए हैं पॉइंट्स आगे के, लेकिन जितना आप सहज योगी बनेंगे तो ये खजाने जो है अपने आप जमा होते जाएंगे। तो सहज योगी बनने के लिए बाबा ने दो चीजें बताई। सहज योगी कौन बनता है? जहां पे सर्व संबंध है और जहां पे सर्व प्राप्तियां हैं। जैसे दुनिया में भी कई लोग होते हैं ना, योगी होते हैं अलग अलग, जैसे आशिक माशुक भी होते हैं तो भी योगी होते हैं, एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं, सारा बुद्धि योग जो है उनका वहीं पे होता है। आशीष नहीं, आशुक आशिक और माशुक, तो वो भी योगी होते हैं। जैसे कोई अगर लोभी व्यक्ति है तो उसको भी हम योगी कहेंगे, उसका जो योग किसके साथ में लगा होता है, जो चीज चाहिए या पैसा धन दौलत जिसके साथ उसका योग लगा है तो वो भी योगी कहा जाएगा। लेकिन बाबा ने जो कहा है कि आप जो बच्चे सहज योगी बनते हो, तो कैसे सहज योगी बनते हो? आप जो एक सर्व संबंध से बाप को याद करते हो, और दूसरा जो है जहां पे प्राप्तियां होती है वहां पे अपने आप हमारी बुद्धि जाती है, जहां से कुछ मिलने वाला होता है। कई बार देखते हैं कि कोई कुछ फोन करता है कि हम आपके लिए भेज रहे हैं 9 बजे की बस में, तो सारा बुद्धि योग वहीं लगा होता है। 10 बजे फोन करेंगे बस आई कि नहीं आई, 11 बजे फोन करेंगे बस आई कि नहीं आई, तो सारा बुद्धि योग हमारा वहीं पे लगा है क्योंकि प्राप्ति होने वाली है। तो जहां तो जहां पे हमारा बुद्धि योग होता है वहां ही होता है जहां से हमें कुछ प्राप्ति होती है, या जहां पे हमारा संबंध होता है। संबंध माना भी जहां पे हमारा इंटेंस संबंध होता है, एकदम खींचने वाला संबंध होता है, जैसे बच्चा माँ को याद करता है या माँ बच्चे को याद करती है। तो जितना हमारा योग बाबा के साथ में होगा उतने ही हमें से सर्व खजाने जो है अपने आप बढ़ते जाएंगे। और इस खजानों को बढ़ाने की जो फिर बाबा ने विधि बताई है, तीन चीजें बाबा ने इसमें बताई है। बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में वो खजाने बढ़ाते हैं तो बिंदी लगाते हैं, बिंदी माना जीरो, बिंदी लगाने के बाद अगर डॉट लगा दो उसके बाद उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती वैसे, लेकिन यहाँ बिंदी माना जीरो। तो दुनिया में जो बिंदी लगाते हैं, बिंदी माना जीरो लगाना, तो डॉट। बाबा ने तीन बातें बताई है इसमें, एक मैं बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो इन ये तीन बिंदियां लगाने से खजाने बढ़ते कैसे? व्यर्थ नहीं चलता है। और तो ये तीन बिंदी लगाने से जो है खजाने हमारे बढ़ते हैं, कि हम जब अपने आप को याद करते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण कुल की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। जब हम इस सोमान में रहते हैं तो अपने आप जो है हमारा व्यर्थ नहीं चलता, और जब जहाँ व्यर्थ नहीं है वहाँ समर्थ है ही है, तो अपने आप हमारा समर्थ चलता है, तो वहां से हमारे खजाने बढ़ते हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, मैं बिंदी आत्मा बिंदी, तो जैसे कहा जाता है कि ये सारी दुनिया जो है ये जो एक एनर्जी है, परमात्मा भी जो एक एनर्जी है, और एनर्जी का ये प्रिंसिपल होता है या ये होता है कि एनर्जी हमेशा हाई से लो की ओर बहती है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा जो है हाईएस्ट एनर्जी है, तो अपने आप बाबा से जो भी एनर्जी है, ज्ञान गुण शक्तियां या जो भी आप कहें, वो अपने आप जो है हमारे तरफ आनी शुरू हो जाती है, अपने आप हमारे पास आना शुरू हो जाती है। जैसे कई बार लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में ही कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और उनको कैसे पता है कि यही तन है और इसमें मुझे जाना है। तो बाबा को थोड़ी ऊपर याद है, कल्प पहले वाली ये आत्मा है करके। अभी दो दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा कि वहां कोई संकल्प नहीं चलता है परम धाम में, शायद कल या परसों की मुरली में कल ही कहा था ना। हाँ हाँ, ब्रह्मा बाबा को तो शिव बाबा का पता ही नहीं है, ब्रह्मा बाबा तो विष्णु के पुजारी थे। मैंने ऐसे सोचा कि ब्रह्मा कई बार मुरलियों में आता है, शिव बाबा कहते हैं कि नंबर वन पावन भी यही था और नंबर वन पतित भी यही बनता है, तो जब बाबा के आने का समय होता है तो उस समय नंबर, इसको रॉन्ग वे में नहीं लेना, नंबर वन पतित जो होता है ब्रह्मा बाबा ही होता है, उनकी आत्मा जो होती है, इसलिए शिव बाबा डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा की आत्मा में ही आते हैं, क्योंकि उस समय उनसे ज्यादा पतित कोई भी नहीं होता है, एकदम लो एनर्जी, पतित माना एकदम लो एनर्जी। मैंने कहा सत्यु के कंपेरिजन में ही, इसलिए मैंने कहा कि गलत इसमें नहीं लेना, लेकिन शिव बाबा को कैसे मालूम पड़ता है कि इसी तन में मुझे जाना है, कि शिव बाबा है 100%, उसके कंपैरिजन में अगर ब्रह्मा बाबा की आत्मा देखा जाए सत्यु के कंपैरिजन में या किसी भी किसमें आप कहें, तो वो जो है एकदम लो एनर्जी होती है, और इसलिए शिव बाबा जो है डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा में ही आते हैं उस समय। हाँ आप जो भी कह लो, यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा नहीं, हम ब्राह्मण आत्मा है, हम सारे कल्प के ही फाउंडेशन है। बाबा जैसे कहता ना कि आप कल्प सत्युग त्रेता के तो है, लेकिन द्वापर कलयुग के भी सारे फाउंडेशन हम ही हैं, सबसे ज्यादा पावन हम ही बनते हैं और सबसे ज्यादा पतित भी जो है हम ही बनते हैं। अच्छा काम भी ब्राह्मण आत्मा ही शुरू करती है और खराब से खराब काम भी ब्राह्मण आत्मा ही शुरू करती है, तो इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम सारा अच्छा काम हम ही करते हो, दुनिया वाले खराब कर रहे हैं। खराब के भी पूर्वज हम ही है तो अच्छे के भी पूर्वज हम ही है। तो ये तीन अपने माँ को ढूंढ लेंगे, वो ढूंढ लेता है बराबर। हाँ। तो बाबा ने इसमें आगे कहा कि तीसरी बिंदी जो बाबा ने बताया ड्रामा बिंदी, अगर हम ड्रामा को याद करेंगे तो जो भी बात हो गई बीती को बिंदी लगाओ, तो अपने आप हमारा व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और हमारे खजाने जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना कि एक संकल्प से दूसरा संकल्प आता है और फिर जो है मकड़ी का जाल बन जाता है और उसी जाल में हम फंस जाते हैं, फिर चिल्लाते हैं, बाबा को कहते हैं कि छुड़ाओ अब। तो अगर हम ये तीन बिंदी याद रखेंगे, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, तो हमारे इन खजानों को हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें बाबा ने और दूसरा बताया, उसमें तीन चीजें और है, बाबा ने कहा कि आप उसमें चेक कर सकते हैं। ये तीन चीजें बाबा ने बताई कि जैसे आप बच्चे बनते हैं तो बच्चा बनना माना अधिकारी बनना, वर्षे के अधिकारी बनना। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में भी जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं कि तीन संबंध हमेशा मेन काउंटिंग गिने जाते हैं, तो एक जो है पालना का संबंध माना बाप का संबंध, दूसरा जो है पढ़ाई का संबंध टीचर का, इसमें बाबा ने कहा पढ़ाई जो है सोर्स ऑफ इनकम है। और उसके बाद जो नेक्स्ट बाबा ने कहा सदगुरु, तो सदगुरु द्वारा क्या मिलता है, वरदान मिलते हैं, आशीर्वाद मिलते हैं। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि अगर आपको पैसा अगर मांगने के लिए कहा जाए और नसीब मांगने के लिए कहा जाए तो क्या मांगना चाहिए, हमेशा नसीब मांगना चाहिए, क्योंकि नसीब वालों के आगे पैसे वाले भी जाकर झुकते हैं। तो बाबा ने ये तीन संबंध बताए हमें। उसके बाद जो आगे बाबा ने फिर इसमें जो बताए दो पॉइंट और बताए हुए बाबा ने, कौन से बातें बताई इसके बाद में, तीन संबंध के बाद में, कौन सी बात बताई अभी हमने, इंग्लिश मुरली रिवाइज कर चुके हम यहाँ पे, संतुष्टता। इन खजानों को चेक कैसे करेंगे कि खजाने है या नहीं, तो खजानों को चेक करने के लिए बाबा ने कहा कि संतुष्टता, आपकी सेवा से आप भी संतुष्ट हैं और दूसरे भी संतुष्ट है, तो हमें पता पड़ता है कि हमारे खजाने जो बढ़ रहे हैं, हमारे खजाने यथार्थ रूप में हम कार्य में लगा रहे हैं, यथार्थ रूप से खजाने हमारे पास जमा हो रहे हैं। तो इसको चेक करने की विधि है संतुष्टता। अगर तीन खजाने हैं हमारे पास, इसके लिए बाबा ने कई बार मुरलियों में पहले कहा भी है कि 5% की आपको छुट्टी है, क्योंकि किसी का अगर स्वभाव ही ऐसा है हम कुछ भी कर लें लेकिन वो संतुष्ट हो ही नहीं रहे, तो लेकिन वो काफी पहले कहा था बाबा ने 5%, अभी शायद उल्टा हो गया होगा 95। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने खजाने जमा है, तो संतुष्टता। तो इन संतुष्टता से हम भी संतुष्ट और सामने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट, सेवा से भी संतुष्ट। उसके बाद जो वापिस तीन बातें बाबा ने बताई है फिर इसमें, नहीं सॉरी दो, इसमें दो और चीजें। संतुष्टता के बाद क्या कहा बाबा ने? निरंतर याद की विधि। बाबा ने कहा कि एक तो मैं हम दिन भर करते हैं मैं, तो मैं को क्या करना है, मैं कौन सी आत्मा, मैं को परिवर्तन करना है। दो चीजें जो है हमारा ध्यान दिन भर खींचती हैं, एक तो मैं और दूसरा मेरा। तो इस मैं को हमें चेंज करना है। तो मैं आत्मा, तो मैं कौन सी आत्मा, इसमें बाबा ने कहा कि सोमान की भी बात की है बाबा ने यहाँ पे, कि जो सोमान में रहता है वो अभिमान से मुक्त रहता है, उसे अभिमान नहीं आ सकता। तो मैं कौन सी आत्मा, अलग अलग सोमान दिए बाबा ने, तो हम उस सोमान को याद कर सकते हैं दिन में। जितनी भी बार हम मैं कहते हैं तो हर एक बार हम याद कर सकते हैं मन में कि मैं कौन सी आत्मा। या तो आप एक ही सोमान लेके दिन भर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो जितने बार आप दिन में मैं बोलते हैं तो हर बार के लिए आप अलग सोमान भी ले सकते हैं। तो एक हो गया मैं, और दूसरा फिर बाबा ने कहा मेरा। तो हम जितने भी बार मेरा कहते हैं तो हर बार मेरा के साथ में क्या बोलना चाहिए, मेरा बाबा। जितना हम मेरा बाबा बोलते जाएंगे तो अपने आप हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे, हमारी मन बुद्धि। मेरे बाबा का पेन मेरा है ही नहीं ना, सब कुछ बाबा का है, तो मेरे बाबा का पेन तो जितना हम मैं और मेरा करते जाएंगे हर बात में, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मेरे बाबा का भाई हाँ तो मेरे बाबा की बंदी माँ हुई ना मेरी तो हमेशा क्या करना है, मैं और मेरा, ये बाबा, ये बात जो है बाबा ने यहाँ पे बताई है। उसके बाद में बाबा ने तीन चीजें और बताई फिर आगे इसमें, खुशी के बारे में बाबा ने कहा है कि खुशी जैसे खुराक नहीं है। अगर हम दिन भर मैं और मेरा बाबा करते रहेंगे, मैं कौन सी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, और मेरा बाबा करेंगे, तो खुशी जो है हमारी बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने जैसे पिछले संडे की भी मुरली में कहा था कि खुशी जैसी खुराक नहीं है, क्या कहा था पिछले संडे की मुरली में, खुशी बांटते रहो। तो बाबा ने यहाँ पे होमवर्क में पूछा है कि बाबा ने होमवर्क दिया है वो सभी ने किया है, तो बाबा ने कहा कि जहाँ पे खुशी है वहां पे हेल्थ वेल्थ हैप्पी तो ऑलरेडी है ही वहां पे। तो हमेशा हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी खुशी का खजाना जमा रहता है। कल की मुरली में, परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि खुशी किन बच्चों को रहेगी, नाखून से, कल की मुरली था, नाखून से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए, हमेशा खुशी में नाचना चाहिए तो खुश हम कितने खुश रहते हैं, जितने खुश रहेंगे तो हेल्थ भी ठीक रहती है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं ना, जितने खुश रहेंगे तो बॉडी में जो है केमिकल्स जो है अपने आप रिलीज होते रहते हैं, वो हमारी हेल्थ को जो है ठीक रखते हैं। अलग अलग मुरलियों में बाबा अलग अलग बातें कहते रहते हैं, लेकिन मेन जो है खुशी जैसी खुराक नहीं जैसे कहते हैं। तो हेल्थ वहां पे है, वेल्थ भी अपने आप आएगी और हैप्पीनेस। तो वेल्थ माना कौन सी वेल्थ, वो विनाशी वेल्थ की बात नहीं करते हैं बाबा, वो तो आएगी ही, लेकिन बाबा अविनाशी वेल्थ की बात करते हैं, और हैप्पीनेस तो है ही हमारे पास ऑलरेडी। तो ये तीन चीजें जो है बाबा ने बताई है। उसके बाद में और तीन चीजें बताइए, और क्या तीन बातें बाबा ने बताई है। बाबा ने कहा कि खुशी जो है बांटो, सेवा जो दिया है बाबा ने, होमवर्क दिया है कि खुशी जो है बांटो, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो बाबा ने कहा खुशी बांटो, जितनी खुशी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। दुनिया में भी कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। तो खुशी बांटो बाबा ने कहा, तो खुशी बांटने के लिए बाबा ने तीन चीजें इसमें बताई है। क्या तीन चीजें बताइए, तो हिंट दे रहा हूं ना, तीन चीजें बताइए बाबा ने। एक तो खुश रहना है, खुश रहना है। आप खुश रहेंगे तो अपने आप सामने वाला खुश होगा ही आपको देख के। खुश करने जाएंगे तो खुद भी दुखी हो जाएंगे फिर हम, इसलिए चैरिटी बिगेंस एट होम। दूसरों को संतुष्ट करने नहीं जाना, पहले स्वयं संतुष्ट होना है। तो एक बाबा ने कहा खुश रहना है, दूसरा जो बाबा ने कहा है कि समस्या स्वरूप नहीं बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। तो ये दूसरा बात जो बाबा ने बताया, कारण नहीं निवारण स्वरूप बनना है बाबा ने कहा है। ये सेकंड बात इसमें बाबा ने बताई। और तीसरा जो है कि समाधान स्वरूप बनना है। तो ये तीन चीजें बाबा ने बताई। तो खुश कैसे रहेंगे, एक तो खुश रहने से खुश रहेंगे, दूसरा जो है समाधान स्वरूप बनना है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना है और हर समस्या का समाधान करना है। तो ये तीन चीजें बाबा ने बताई। उसके बाद बाबा फिर कर्नाटक ग्रुप से मिल रहे थे, तो कर्नाटक वालों के साथ में क्या कहा बाबा ने, एक तो सेवा के लिए कहा कि सेवा जो है सब जगह। उसमें बाबा ने, इसमें मुरली में नहीं बताया लेकिन बाबा ने एग्जाम्पल दिया अफ्रीका वालों का, जैसे उस समय प्रोजेक्ट चल रहा था सर्व अफ्रीका, तो सारे अफ्रीका में वो सेवा कर रहे थे। तो बाबा ने कहा कि कोई भी कोना रह नहीं जाना चाहिए, कि अंत में आत्माएं हमें उलझाना दे कि हमारा बाप आया और आपने हमें बताया नहीं। तो ये बाबा ने कहा कि एक तो ये सेवा की बात की, और दूसरी बाबा ने कौन सी बात की इसमें, एरिया हो गया, सेवा की बात हो गई, और कौन सी बात की बाबा ने इसमें कर्नाटक वालों के साथ में। इसमें भी दो बातें हुई, एक सेवा की बात, दूसरी वायुमंडल की बात बाबा ने की। जैसे वो साइंस वाले क्या करते हैं, गर्मी में सर्दी का अनुभव कराते हैं, सर्दी में गर्मी का अनुभव कराते हैं, तो वो है साइंस की शक्ति, और आपकी कौन सी है, साइलेंस की शक्ति। तो आप भी जो है साइलेंस की शक्ति से उन्हें अनुभव कराओ। तो ये कर्नाटक वालों के साथ में मिलने समय बाबा ने कहा। फिर बाबा फर्स्ट टाइमर्स के साथ में मिले हैं, तो उस समय बाबा ने कहा है, क्या कहा फर्स्ट टाइमर्स के साथ में, उसके पहले क्या कहा, पहली लाइन क्या थी, और ब्राह्मण जीवन के जन्म की बधाई। ये बाबा ने फर्स्ट टाइमर्स के साथ में कहा है। और उसके बाद में बाबा ने कहा कि मिठाई तो खाएंगे, लेकिन वो जो दिलखुश मिठाई खाएंगे वो तो मुंह में रखी और खलास, लेकिन बाबा जो यहाँ पे दिलखुश मिठाई जो आपको खिलाते हैं वो दिलखुश मिठाई हमेशा साथ रखनी है आप हमको मधुबन में आने की। और उसके बाद बाबा ने ड्रिल कराई है फिर, तो उसमें बाबा ने कहा कि एक सेकंड में मैं और मेरा बाबा, मन को ऐसा कंट्रोल करो कि और कोई भी याद ना आए। तो जो फर्स्ट मुरली चली थी उसमें भी बाबा ने ड्रिल कराई थी, सेकंड मुरली जो चली थी उसमें भी बाबा ने ड्रिल कराई थी, थर्ड मुरली में नहीं कहा था कुछ वैसे खास ड्रिल के बारे में, लेकिन बाबा ने कहा था कि मन बुद्धि को कंट्रोल करो, आने वाला समय जो है बहुत नाजुक आने वाला है। और ये फोर्थ मुरली जो चली है उसमें भी बाबा ने कल ड्रिल की बात की है कि समय ऐसा चल रहा है आने वाला है कि उस समय मन और बुद्धि को एकाग्र करने की बहुत जरूरत होगी। तो बाबा ने कहा कि एक सेकेंड में परमधाम निवासी आत्मा बन के मैं और मेरा बाबा, संसार कुछ भी नहीं। तो ये जो है कल की जो मुरली चली है वो हमने रिवाइज की, तो 3-2-3-3, 2-2-3-3 ये पॉइंट्स थे। तो एक बार रिवाइज करेंगे हम, पहले तीन पॉइंट्स कौन से थे, होलियस्ट हाईएस्ट रिचेस्ट, उसके बाद में फिर दो सहज योगी बनने के लिए दो चीजें बाबा ने बताई, सहज योगी का एक सर्व संबंध और प्राप्तियां, उसके बाद में तीन चीजें, तीन डॉट उसको बढ़ाने की विधि क्या है खजाने को, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। उसके बाद फिर तीन चीजें, तीन संबंध बाबा ने बताए, पालना का संबंध बाप द्वारा, टीचर का संबंध और सदगुरु का संबंध। उसके बाद फिर दो चीजें बाबा ने बताई, खजानों को चेक कैसे करेंगे, खजानों को चेक करना है संतुष्टता, स्वयं भी संतुष्ट दूसरे भी संतुष्ट, दो दो चीजें। उसके बाद दो चीजें और बताई, मैं और मेरा, मैं और मेरे को चेंज करना है, मैं कौन सी आत्मा और मेरा बाबा। उसके बाद में तीन चीजें और बताई, खुशी में जो है तीन चीजें बताई बाबा ने, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, और उसके बाद में तीन चीजें और जो बाबा ने बताई, खुश रहना है, खुश करना नहीं है, खुश रहना है, और कारण को निवारण में बदलना है और समस्या का समाधान बनना है। तो ये तीन चीजें बताई। और फिर कर्नाटक वालों के साथ में बाबा ने वायुमंडल की बात की और सेवा की बात की, सेवा को बढ़ाना है ताकि अंत में कोई भी आत्मा हमें उलझाना न दे, और फर्स्ट टाइमर के साथ में बाबा मिले, और लास्ट में जो है बाबा ने जो ड्रिल कराई कि एक सेकंड में मन बुद्धि से एकाग्र होकर परमधाम में मैं और मेरा बाबा और कोई भी नहीं, संसार की कोई भी बात याद नहीं आए। ओम शांति।
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो।